मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 11 अगस्त 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल पूरी गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत करता हूं। गर्मजोशी शब्द का इस्तेमाल मैंने मित्रों इसलिए किया है कि दो दिन के गैप के बाद अब हमारी मुलाकात हो सकेगी, तो मैं अपने इन दो दिन की जो ऊर्जाएं जो संचित होंगी उनको पहले ही आप तक इस गर्मजोशी शब्द के माध्यम से संप्रेषित करना चाह रहा हूं। तो मित्रों शुक्रवार है तो मैं कुछ सूचनाएं आपको दे दूं, खासकर नए स्टूडेंट्स के लिए, नए लिसनर्स के लिए यह बहुत जरूरी होता है, और वह यह कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आप लोगों को प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि मिलती रही है। साथ ही चूंकि दो दिन का गैप होता है तो हम लोग पढ़ने के लिए आपको इन्वॉल्व रखने के लिए कुछ और भी रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र और योजना के एक एक टोटल चार आर्टिकल होते हैं, दो हिंदी के और दो इंग्लिश के, और साथ ही मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस दिया जाता है। तो मित्रों ये कुछ सूचनाएं थी। आज के मुख्य विषय के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम बात करेंगे थोड़ा सा बिम्सटेक पर, BIMSTEC, बिम्सटेक, है ना। क्यों मैंने इस सब्जेक्ट को चुना है और ये क्या है इस पर अभी हम आएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी दूसरी खबरों को जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमें जानना चाहिए। फ्रेंड्स आपने एक न्यूज सुनी और उसमें ये था कि जो बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक है वो पारित हो चुका है, मतलब संसद ने पारित कर दिया, संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है। अब ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा और फिर ये एक्ट बन जाएगा। इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यहां मैं आपको केवल थोड़ी सी बात कहकर इसे खत्म करूंगा। मित्रों इसके बारे में आप लोगों को जो कॉम्पिटिशन की मैगजीन्स होती हैं उनमें डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अखबारों में भी हो सकता है कि इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आए, शायद कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिल जाए। जब भी ऐसा होगा तब मैं आपको तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन मैं खासकर जो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर्स रहे हैं उनके पैटर्न को देखते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। आपका जो थर्ड पेपर है मेन्स का, इकोनॉमिक्स का, उससे रिलेटेड है, और इस जो अधिनियम का अब एक्ट बन जाएगा कह लीजिए, जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जो लोग व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति बैंक से लोन लेते हैं और बाद में जानबूझकर फिर लोन वापस नहीं करते बैंकों को, उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जा सके, उनसे कैसे लोन वसूल किया जा जाए, ये अधिकार अब सरकार को दिए गए हैं इस संशोधन के जरिए। ये बेसिकली ये संशोधन विधेयक है ना, 1949 में जो एक्ट था उसे संशोधित किया गया। सोच करके देखिए कि 1949 कितने साल हो गए, 70 साल ऑलमोस्ट, तब जाकर के इसमें संशोधन किया जा रहा है। और सच पूछिए तो ये जो कदम है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है आर्थिक क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कि नई सरकार खासकर आर्थिक शुद्धिकरण के जबरदस्त काम में लगी हुई है, काला धन कैसे समाप्त किया जाए और दूसरे दूसरे तरीके कैसे अपनाए जाएं। और अगर आपने कल डीडी न्यूज सुना हो तो आप देख, डीडी न्यूज में एक बहुत अच्छी खबर थी, चूंकि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसकी मैं थोड़ी सी यहां चर्चा कर देता हूं। वो ये है फ्रेंड्स कि जो टेररिस्ट्स को जो फंडिंग होती थी, जो आतंकवादियों को जो पैसा मिलता था, सरकार ने अब उस पर भी शिकंजा कसने के ठान ली है। और आप देखिए कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत के नेता हैं उनसे पूछताछ चल रही है, और उसमें बहुत ये तथ्य सामने आए भी है कि कैसे विदेशों से पैसा आता था और फिर उस पैसे को कैसे आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और जिस दिन ये जो फंडिंग है, आतंकवादी फंडिंग है, उस पर सरकार ने नियंत्रण कर लिया, मान करके चलिए कि इनके रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। देखिए जो नए बेचारे नौजवान हैं, जो हाथ में पत्थर लेकर के फेंक रहे हैं, जो हाथ में बंदूक लेकर के गोलियां चला रहे हैं, ये इनफैक्ट ठीक है, कुछ आप माइंड उनका चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिकली उन्हें लगता है कि वो तो अपना रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। जिस दिन ये खत्म हो गया, पैसा मिलना बंद हो गया, तो इनकी कमर टूट जाएगी और आतंकवाद पर बहुत एक बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। उसमें जो एक्सपर्ट आए हुए थे, सरीन जी थे, सुशांत सरीन, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि उनकी इस विषय पर, जो हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, उस पर बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छी पकड़ थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार ने अभी जो कुछ कोशिशें शुरू की हैं, ये काबिले तारीफ और इनके रिजल्ट्स आएंगे। जैसे सरकार ने छापे मारने शुरू किए, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ है, आप न्यूज में सुनते हैं, उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर नोटबंदी के कारण इनके पास जो भी खजाना जमा होगा वो बेकार हो गया, कागज के टुकड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा कि आधार से जो लिंक करने की बात हुई कि भाई आप अपने अकाउंट को आधार से जोड़िए, इससे इनकी कमर टूटी। इसके बाद फिर KYC आया, नो योर कस्टमर, बैंकों से कहा गया कि आप अपने कस्टमर्स की बहुत अच्छे तरीके से पहचान कीजिए, KYC शुरू किया गया। तो अब जो पहले बोगस अकाउंट खुलवा लेते थे, गलत नामों से अकाउंट खुलवा करके और चलाते रहते थे, उनके सामने तो संकट हो गया। और आतंकवाद के लिए जो पैसा आ रहा है, कोई व्हाइट मनी तो आ नहीं रहा है, लुक छिप कर ही आ रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो टेररिस्ट फंडिंग है, उस पर एक बहुत जबरदस्त आघात लगा है और इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस आतंकवादी गतिविधियों पर होगा, मतलब इनमें कमी आएगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक और दूसरा टेररिस्ट फंडिंग, है ना, दोनों अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड भी है, लिंक्ड इस मायने में आर्थिक अपराध के मामले में, राइट। तो ये दोनों टॉपिक आप तैयार करेंगे और मैगजीन्स में आपको इन पर डेफिनेटली पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद न्यूज में आपने दो शब्द सुने होंगे फ्रेंड्स, वो है स्थायी समितियां और संयुक्त समिति। हमारे संसद की कुछ समितियां हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, और मैं चाहूंगा कि इन पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें यह लगता है कि जो भी काम हो रहा है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जहां 540 सदस्य बैठे हैं, 250 सदस्य बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं और वहीं सारे फैसले हो जाते हैं। दोस्तों जो प्रोसीजर, जो काम करने की जो प्रणाली है लोकतंत्र की, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बहस तक सीमित है, है ना। हमारे यहां संसदीय समितियां बनाई गई हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप ये मत समझिए कि जो संसद सदस्य हैं वहां केवल क्वेश्चन पूछते हैं, बहस में भाग ले लेते हैं और फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं। ये मान के चले कि हर संसद सदस्य किसी न किसी समिति का सदस्य होता है और उसमें उसका बड़ा एक्टिव रोल होता है संसदीय समितियों में। बिना संसदीय समितियों को जाने हम लोकतंत्र की कार्य प्रणाली को नहीं समझ सकते। तो इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसे मिस कर देते हैं। अगर आपको पार्लियामेंट्री जो वर्किंग प्रोसीजर है समझना है, तो संसदीय समितियों को समझना चाहिए। तो दोस्तों स्थायी समितियां वो होती हैं जो बनी रहती हैं, लगातार काम करती रहती हैं। आप लोक लेखा समिति का नाम सुनते होंगे, स्थायी समिति है। आप प्राक्कलन समिति का नाम सुनते होंगे, न्यूज में भी आती हैं। ये सब परमानेंट है, ये भंग नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। लेकिन दूसरी होती है तदर्थ समितियां। तदर्थ समिति का मतलब एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी में क्या होता है कि जब मान लीजिए कि किसी मामले की जांच करनी है, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई, राइट। उसमें संसद के सदस्य ही होंगे, लेकिन इन समितियों में, क्योंकि ये संसदीय समितियां हैं, संसद के सदस्य होंगे, तो जांच के लिए बना दी या सलाहकार समिति बना दी। जैसे अभी रक्षा मंत्रालय के न्यूज में था कि रक्षा मंत्रालय कुछ चीजों के बारे में उसकी जो स्थायी समिति है उसने रिकमेंड किया है, तो वो स्थायी समिति थी। लेकिन एक मामला ये था कि कुछ मामले संयुक्त समिति को सौंप दिए गए हैं। तो होता क्या कि जब किसी विधेयक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो जाता है, लोग उसमें चेंज की मांग करने लगते हैं, तो अब देखिए पार्लियामेंट की बहस से तो उसका हल होता नहीं है। तो क्या होता है कि एक ज्वाइंट कमेटी बैठा दी जाती है, एक संयुक्त समिति। संयुक्त इसे क्यों कहा गया, कि ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त दोनों के सदस्य इसमें हैं। देखिए दोनों हमारे सांसद हैं, है ना, और विधेयक को दोनों जगह से पारित होना है। तो होता यह है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या की तुलना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आधी रहती है इन समितियों में। इन प्रैक्टिकल भी लगभग आधी है, लोकसभा में 540 है, राज्यसभा में 542 है, यहां राज्यसभा में 250 है, तो आधी ही है। तो आपने न्यूज में यह भी सुना कि इस संयुक्त समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। तो अब मतलब एक बड़ा वर्ग इस पर बहस न करके और जो 30 पार्लियामेंट मेंबर हैं वो उस पर बातचीत करेंगे, गंभीर बातचीत होगी, वो बाहर से भी सलाह मशविरा लेंगे, करेंगे और फिर संसद को अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि भाई देखिए इस पर ये हमारी सिफारिश है, केवल सिफारिश करेंगे। अब उसको मानना न मानना ये सरकार के ऊपर है और संसद के ऊपर है। तो समितियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं, कल जो मैंने कहा था कि एक बहुत अच्छा मेरे पास फैक्ट ऑफ द डे है, लेकिन उसकी व्याख्या करने का वक्त मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूं। जो सोशियोलॉजी है आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस का, आप देखिए कि फर्स्ट पेपर में सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर से भी उसका रिलेशन होता है जनरल स्टडीज में। मित्रों एक फ्रांस के समाजशास्त्री हुए हैं, उन्हें मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, उनका नाम है लुई डुमांट। उन्होंने भारतीयों को और खासकर हिंदुओं को होमो हायरार्कियस कहा था, इसको आप इन्वर्टेड में कह सकते हैं होमो हायरार्कियस। कहने का उनका मतलब था कि भारत ने समाज में जो वर्गीकरण किया है वो बेसिकली समाज के स्तरीकरण के लिए नहीं किया है, स्टेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, बल्कि समाज में असमानता लाने के लिए कुछ खतरनाक किस्म के प्रावधान किए। उसमें से उन्होंने कुछ खतरनाक चीजें बताई हैं जो समाज में असमानताओं को बहुत जबरदस्त रूप से पैदा करते हैं और उन्हें कर दिया है। उसमें सबसे खतरनाक है जाति व्यवस्था, सबसे खतरनाक हथियार माना है उन्होंने, जिसने समाज में जबरदस्त रूप से असमानता पैदा की। दूसरा उन्होंने कहा कि लैंगिक असमानता, स्त्री और पुरुष में जो भेद है वह, और उन्होंने ये बात स्पेशली कही कि जो स्त्री पुरुष का जो भेद है ये केवल हिंदू में ही नहीं है बल्कि मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों ने ही भारतीय समाज में पुरुष की सत्ता को बढ़ावा दिया है, और जो इस तरह के लोग होते हैं उसे उन्होंने कहा होमो हायरार्कियस, यानी कि इस तरह की जो सोसाइटी होती है उसे उन्होंने होमो हायरार्कियस कहा है। ये बहुत अच्छा रेफरेंस है और इस रेफरेंस को आपको नोट कर लेना चाहिए और जहां भी सुटेबल हो वहां आपको इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब जितना वक्त बचा है उसमें मैं बिम्स्टेक के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मित्र, आपने न्यूज में सुना है कि हमारी विदेश मंत्री अभी नेपाल गई हुई है क्योंकि नेपाल में इसकी बैठक हो रही है। इसमें देखिए जो बिम्स्टेक है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 1997 में ये संस्थान ऑर्गेनाइजेशन बना था, 1997 में। इसका जो बी है इसका पूरा नाम आप देखिए, एक एक शब्द से आप मैच करते जाइएगा, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं बिम्स्टेक, BIMSTEC। बे ऑफ बंगाल इसका मतलब साफ है कि इस देश के जो सदस्य हैं वो हैं जो बंगाल की खाड़ी के आसपास रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास रहने वाले कौन से देश हैं वही इसके सदस्य होंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। मजेदार बात है कि आप देखिए कि कुछ देशों के नाम आपको बिल्कुल वर्ड्स के हिसाब से बिम्स्टेक के हिसाब से मिलेंगे। 5 सदस्य मैं आपको शुरू के बताता हूं, टोटल 7 मेंबर्स हैं, आप करते जाइए। बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड, बिम्स्टा तक हम आ गए। ई में फिर आ जाते हैं आगे चल करके ई और सी देश के नाम पर आधारित नहीं है, है ना। फिर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन से संबंधित है। ये पांच देश शुरू में थे और ये इसका नाम भी कुछ इसी तरीके से था। बाद में 2004 में शायद इसे बिम्सटेक अलग तरीके का नाम दे दिया गया। दो देश और हैं, भूटान एंड नेपाल। मैं अब फिर से रिपीट कर देता हूं, देशों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। मित्रों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है, भारत जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नीति पर आ गया है, तो डेफिनेटली भारत के लिए इस तरह के संगठन बहुत अधिक मायने रखते हैं, और ऐसे दौर में तो और अधिक मायने रखते हैं, जबकि चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसके साम्राज्यवादी मंसूबे लगातार फैलते जा रहे हैं। इसमें जो दो देश हैं, श्रीलंका और खासकर नेपाल, इसमें तो ये जबरदस्त रूप से अपनी घुसपैठ बनाने की भी कोशिश कर रहा है चाइना। तो ऐसे समय में ये जो सात देशों का जो एक संगठन है, इसमें भारत की उपस्थिति अपने आप में भारत के लिए बहुत मायने रखती है और साथ ही साथ भारत को बहुत मजबूत भी बनाती है। इनका जो उद्देश्य है मित्रों, वो ये सिंपल सा है कि जो हमारे कई क्षेत्र हैं, जो हमारे जीवन के व्यापार के, उसमें एक दूसरे से सहयोग बढ़ाना, जिसमें आप कह लीजिए कॉमर्स है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, फिशरी है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्सटाइल्स हैं, इन सब क्षेत्रों में हम कैसे एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी नेपाल में इसकी मीटिंग हो रही है, जहां हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो वहां गई हुई हैं। दो दिन का सम्मेलन है, आज उसका आखिरी दिन है। सम्मेलन के बाद जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, डेफिनेटली हम लोगों को रिव्यू पढ़ने को मिलेंगे, एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिम्सटेक को वैसे सुनिए तो लगता है कि ठीक है, छोटा सा संगठन है, सात छोटे छोटे देश हैं, देश भी क्या है, पूरे एशिया के भी तो है नहीं। इसमें आपको साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है, वही देश इसके सदस्य हैं, तो लगता है कि ठीक है, कोई बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थितियां उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है मेंस में कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर के ही इंटरनेशनल रिलेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से बिम्सटेक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो दोस्तों, ये बिम्सटेक के बारे में कुछ बातें थी। अब मैं प्रेस क्लिपिंग्स पर आता हूं, और प्रेस क्लिपिंग्स पर तो बात करने की स्थिति रहती नहीं है, और मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत भी नहीं है, तो दोस्तों उसे आप देख लेंगे। अब मैं अंत में स्वागत करना चाहूंगा अपने एक नौजवान साथी का, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लास के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और उन साथी का नाम है भवेश कुमार निषाद, जो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। तो भवेश, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से जो विदाई चाहता हूं वो दो दिनों के लिए, सोमवार को हमारी फिर मुलाकात होगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।